ये भव्य नो 25 मई 2020 का शुभ दिन आप सब के लिए प्रेरणादायक भक्ति से भरपूर हो। आज का विषय है भक्ति की शक्ति या भक्ति में शक्ति। तुलसीदास जी लिखते हैं, देहु भक्ति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भव ताप सावनी। इस संसार के दुखों से दूर रहने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान से बार बार यही हाथ जोड़ कर मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें अपने चरणों की भक्ति दो, ताकि हमारे त्रिविध ताप, तीन किस्म के दुख है इस संसार में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुख मनुष्य को बहुत सताते हैं, लेकिन भक्त के निकट ये दुख आते भी नहीं, आते भी हो तो बड़ी शीघ्रता से चले भी जाते हैं। इसी से संबंधित मैं श्री महाराज जी के समय का एक संस्मरण आज आपको सुनाऊंगी, एक अनोखी घटना के नाम से, या कह लो कि विपत्ति में भी कृपा न होती। मार्च 1976 में भारी बारिश हुई, 9 दिन लगातार वर्षा होने के कारण नाले में बाढ़ आ गई, मंदिर में स्थान स्थान पर पानी बहने लगा। इन दिनों मंदिर में श्री महाराज जी, मैं और एक पंडित जी, तीन लोग ही थे। छोटी कुटिया के अतिरिक्त और कोई कमरा अभी नहीं बना था। भारी वर्षा के कारण रसोई घर में भी जल भर गया था, स्टोव रखने के लिए भी स्थान नहीं था, इसलिए 5-6 दिन से भोजन पकाना भी मुश्किल था। एक दिन सायंकाल आरती के बाद बिजली चली गई, एकाएक भारी जल प्रवाह श्री माँ देवी की गुफा के आगे से होकर नीचे सड़क की ओर बहने लगा। एकाएक किसी बड़ी चीज के गिरने की जोर की आवाज भी आई, ऐसा लगा कि कोई दीवार ही गिर गई है। मैं कुटिया में थी, मैंने देखा कि मेरी कुटिया में भी जल भरने लगा, इसलिए मैं बड़ी कठिनाई से सीढ़ियां उतरकर श्री महाराज जी के पास जा बैठी। श्री महाराज भी चिंता मगन से थे। कुछ बताऊं मैं उन्हें, उससे पहले वे खड़े हुए और बोले, आवाज कहां से आई? इससे पहले कि मैं फिर उनको कुछ बताऊं, तो उन्होंने क्या किया कि वे दरबार की लटकती घंटी के पास दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बात है, मंदिर की रक्षा करनी है या नहीं? यदि वर्षा बंद करती है तो ठीक है, अन्यथा बाबा सहित मंदिर को गंगा जी में मिला दो। आधे घंटे के पश्चात वर्षा थम गई। इतने में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP से हरी सिंह, जो प्राया श्री महाराज जी के पास आता रहता था, आया। श्री महाराज ने हरी सिंह को कहा, हरी, लाला पंडित को लेकर ऊपर चले जाओ, कुछ बोरियां भी ले जाओ, जहाँ नाला अपना प्रभाव मोड़ कर इस ओर आ गया है वहाँ बोरियां भर कर रख दो, ताकि जल प्रवाह रुक जाए। हरि और पंडित दोनों बोरियां लेकर ऊपर गए और श्री महाराज जी के कथा अनुसार जल प्रवाह रुक गया। लगभग 1 घंटे के पश्चात जल प्रवाह रुका, सारी सीढ़ियां मिट्टी से भर गई थी और त्रिमूर्ति के दाहिनी ओर की दीवार भी गिर गई थी, क्योंकि वह केवल पत्थरों की साधारण सी दीवार थी। उन दिनों त्रिमूर्ति के स्थान पर 3 चित्ते ही रखे थे, दीवार गिरने से अंदर मिट्टी पत्थर भर गए थे, इसलिए वहां आरती करना भी कठिन हो गया था। मैंने वो रात श्री महाराज जी के चरण कमलों के पास बैठकर बिताई। पंडित जी भी एक और बैठे रहे, हरी भी एक और बैठा रहा, और कोई स्थान ही नहीं था, वो 10 फुट के स्थान में हम चारों आदमी बैठे रहे रात भर, और मैं तो जप ही करती रही। प्रातः हुई तो श्री महाराज जी ने जाकर देखा कि मेरी कुटिया तथा रसोई घर दोनों ही टेढ़े हो चुके हैं और अंदर जल ही जल है। इसलिए महाराज जी ने बाहर आकर कहा, माँ आप कुछ दिन मंदिर से कहीं बाहर चले जाओ, अपने माँ के पास चले जाओ, अपने घर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगी। अब अभी तो 1 साल 2 साल ही हुए संन्यास लिए, कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। तो श्री महाराज जी भी कुछ सोचने लगे, फिर कहते मंडी चले जाओ। कहते मंडी में मेरा कौन है? कहते सुभाष के घर। मैं कहते मैं तो उन लोगों को जानती भी नहीं। इतने में एक जीप आई और वहां की दरबार के आगे जो गेट है सड़क पर, उसके आगे खड़ी हो गई। जीप में से एक महिला उतरी, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। तो मैंने देखा कि वो तो एक मेरी छात्रा ही थी, जिसको मैंने 10वीं 11वीं में पढ़ाया था, जो आजकल स्कूल में भंजी लगी हुई है, टीचर लगी हुई है। उसने नमस्ते की। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहते स्कूल। कहाँ है? स्कूल राइसन में। मैंने कहा बात बन गई। मैंने कहा जीप में जगह है? कहते हाँ। फिर मैंने महाराज जी को कहा, स्वामी जी मैं राइसन चली जाती हूँ बड़ी दीदी के पास, जीप तो आई गई है। महाराज जी ने कहा ठीक है, आप जाओ। मैंने 2 कपड़े उठाए, पोटली में बांधे। उन दिनों मेरे पास बस 3 साड़ियां ही थी, तो एक पोटली में बांध कर मैं उनको लेकर के उस महिला के साथ राइसन चली गई। जगह जगह रास्ते में जीप रुकती थी और पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आखिर हम सायकाल राइसन पहुंची गई। वो मैं अपनी दीदी के पास चली गई। 8 दिन में वहां रही और श्री महाराज जी ने मंदिर का ठीक ठाक अच्छे से मंदिर का पुनः मरम्मत आदि करवाई और उस कुटिया को पुनः रहने योग्य बनाया। और 31 मार्च से 8 अप्रैल तक उसमें अखंड नवरात्रि होने के कारण अखंड वहाँ हरे रामा का पाठ भी किया गया। 8 अप्रैल को रामनवमी थी, विशाल भंडारा, हवन और कन्या पूजन करके हम सब निश्चिंत हुए। लेकिन अभी एक और समस्या खड़ी हुई, आर्थिक अभाव या बजट ना होने से मंदिर की सुरक्षा के लिए बहुत ही कठिनाई आती थी। पहाड़, नाले, ढलान पे बने हुए छोटे छोटे कमरे, वो भी कच्ची, इसलिए कभी भी लगता था कि कुछ हो जाएगा। और ऊपर वर्षा के कारण एक बहुत बड़ी चट्टान ऐसे दिखती थी मानो कब ना कब वो गिर जाएगी मंदिर पर और मंदिर का नुकसान करेगी। तो श्री महाराज जी कई बार ऊपर जाते, हाथ जोड़कर चट्टान को कहते माँ आओ तो आओ, लेकिन ढंग से आना। और मुझे आके कहते माँ आप चली जाओ अखाड़े बाजार, चले जाओ अपनी माँ के पास, ना जाने ये चट्टान कब आ जाएगी और कब मंदिर को नष्ट करेगी, कब आपको भी खतरा पैदा हो जाएगा, लोग कहेंगे कि माता जी भी खत्म हो गई, जाओ आप चली जाओ, बहुत आग्रह करते वो। लेकिन मैंने कहा स्वामी जी अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी, कोई बात नहीं। महाराज जी 10-15 पौड़ियां नीचे उनकी कुटिया थी और मेरी ऊपर जैसे थी, तो रात भर स्वामी जी सोते नहीं थे, वो देखते थे ना जाने कब चट्टान आ जाएगी, तो मैं माता जी को आवाज दे दूंगा, उठा दूंगा। ऐसे ही काफी समय व्यतीत हुआ और कच्चे नाले को पक्का करने के लिए भी सोचा गया कि जो नाला कच्चा जो बार बार पानी सो आता है उसको पक्का करना चाहिए। तो वही बात, बजट भी नहीं था, वर्कशीट भी नहीं था। एक दिन राम शीतल जी आए और कहते माता जी आपके पास मंगलवार को एक्सीन साहब आते हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ आती है, वो आपकी सहेली है, आप उनसे बातचीत करती हैं, तो आप उन्हीं को बोलो एक्सीन साहब के हाथ में है ये नाला बनवाना। अच्छा, अगले सप्ताह मंगलवार आया, दोनों पति पत्नी गुफा में गए और आकर के उन्होंने क्या नाम प्रसाद लिया, महाजन एक्सिन तो नीचे चले गए, उतर गए और वो उनकी धर्म पत्नी मेरे साथ बातचीत करने लगी। वो मेरे से किताबें पढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद साहित्य ले जाया करती थी। तो मैंने कहा आपके पति क्या काम करते हैं? तो उसने कहा कि मेरे पति तो PWD में एक्सियन है। मैंने कहा देखो आप ऐसा करो कि इनको बोलना कि ये नाला कच्चा हो गया है और हमें इतना भारी ये नुकसान भी पहुंचाता है, मंदिर भी ना जाने कब इस नाले में बह जाएगा, तो कृपा करके आप महाजन जी को बोलो कि ये कार्य करवा दे। उसने ऊपर से आवाज लगाई, पत्नी ने पति को ऊपर से आवाज लगाई, कहा सुनो सुनो जी सुनो जी, पंत जी की कहते ब्याह ऊपर आओ। वो पंजाबी लोग थे। महाजन जी ऊपर आए, उन्होंने मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली, मेरे चरणों को देखते हुए कहा क्या काम है? मैंने कहा भाई साहब काम ये है कि ये नाला कैसे हमें दुख देता है, पानी आ जाता है और कच्चा हो गया है। कहते कोई बात नहीं, कल से नाला पक्का हो जाएगा, शुरू कर देंगे हम काम। और वो लोग चले गए। दूसरे दिन ठेकेदार विनोद महाजन आ गए और उन्होंने इस कार्य को करना शुरू कर दिया। नाला तो पक्का हो गया लेकिन वो चट्टान उसकी समस्या अभी बनी हुई थी। ना जाने वो चट्टान कब आ जाती और कब सारे मंदिर को तोड़ देती। उस चट्टान को रोकना तो किसी एक्सियन किसी PWD के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं था। वो एक अजीब दिशा में और दशा में लटकी हुई थी और ये शिव मंदिर के ठीक ऊपर दिखाई देती थी और इससे महाराज जी बड़े ही चिंतित थे और आने जाने वाले भक्त भी चिंतित रहते थे कि ना जाने ये चट्टान कब आ जाएगी और कब आकर के समुद्र को तोड़ देगी। तो महाराज जी फिर मुझे हाथ कहते माँ आप सुनो बात सुनो, आप चली जाओ, ना जाने कब आ जाएगी, रात को आती प्रातः आती। मैंने कहा स्वामी जी कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं जाएंगे, कोई बात नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। इस तरह से पूरी बरसात निकल गई लेकिन चट्टान वैसी की वैसी ही खड़ी थी। प्रथम सितंबर 1976 का दिन था, मौसम उसमें बिल्कुल साफ था। मैं गीता भवन की छत पर बैठी थी। मेरे पास एक भक्त महिला जो अमृतसर से आई थी प्रेमलता खन्ना जी बैठी थी। इनके पिता श्री मुनि लाल रंजय ढालपुर में पहले रहा करते थे और ये महिला कभी कभी अमृतसर से आके मेरे पास 2-4-15 दिन रहकर चली जाती थी। उस समय मैं वहाँ बैठकर भागवत पढ़ रही थी और महिला सुन रही थी। अचानक एक गर्जन हुआ, तभी सामने सरकारी बगीचे से लोगों ने सीटियां बजाना शुरू किया। मैंने आकाश की ओर देखा, वहाँ बादल की टुकड़ी भी नहीं थी, तो ये गर्जना हुई कैसे, कैसे कहाँ से आई? जब सीटियां सुनी तो लगा कि ये तो खतरे का संकेत है। फिर मन में आया कि ना जाने अवश्य वो चट्टान ही खिसकी होगी और मैंने शीघ्रता से प्रेमलता जी का हाथ पकड़ लिया और खड़ी हो गई। इससे पहले कि हम 2 कदम आगे बढ़े और बिजली के खंभे के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो गए। उसी समय वह बड़ी चट्टान जो मंदिर के ऊपर लटक रही थी ऊंची ऊंची कलाबाजी मारते हुए सड़क को पार कर बीच नदी में जा पहुंची। सड़क पर चट्टान के टकरा जाने से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था जिसके कारण थोड़ी देर यातायात भी बंद हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा माता की कृपा से उसमें वहाँ आने जाने वाले कोई भी ना गायें थी ना बच्चे थे। इसमें भी शाम का 5 बजे का था, गायें भी अपने घर की ओर जा रही थी और बच्चे भी स्कूल से आके इधर उधर जा रहे थे। लेकिन जब सड़क पर वो चट्टान गई तो उसमें कोई भी वाहन ना यात्री था ना ही कोई पशु भी था। यातायात बंद हो जाने के कारण बसें रुक गई और बसों से रुक कर लोग नीचे आए मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर सबने महादेवी को मत्था नवाया और हैरान हो गए कि इतनी बड़ी चट्टान आई और किस प्रकार मंदिर को बचा करके नदी में जा बैठी है। मैं भक्त मेलक का हाथ पकड़कर उसे गीता भवन की छत से नीचे उतर आई। गुफा में जाकर मैंने हम दोनों ने माँ को नमस्कार किया। तब भक्त मेला ने उस स्थान को देखने की इच्छा व्यक्त की जहाँ से चट्टान गिरी थी, इसलिए मेला भक्त को साथ लेकर मैं पहाड़ की ओर गई। शिव मंदिर से भी आगे काफी ऊपर वो पहाड़ है जहाँ वो चट्टान लटकी हुई थी। वहां जाकर चट्टान के गिरने के निशानों को देखकर स्पष्ट आभास हो गया कि जैसे ही चट्टान ने खिसक कर पहला पलटा खाया, किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी दिशा ही मोड़ दी थी। पहली बार चट्टान भूमि पर टकराने के पश्चात बाईं ओर की ओर मुड़ गई थी, अन्यथा ये सीधे नीचे गीता भवन की ओर आती तो गीता भवन को तोड़कर नीचे की ओर निकलकर घाट को भी हानि पहुंचाती। माँ की कृपा से चट्टान बिल्कुल किनारे से होकर निकल गई। उसने भी ऐसा लिया कि कुछ क्षण पहले ही सड़क पर से निकलने वाली एक जीप तथा कुछ कुली लोग चट्टान के जा रहे थे, वो भी उसमें सड़क पर नहीं थे। भक्त लोग माँ की महिमा का गान करते हुए अपने अपने घरों को गए और चट्टान से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई देखकर बार बार इस अचंभे से बहुत ही हैरान होते थे। चट्टान नदी के पानी के बहाव के साथ आगे इस प्रकार बढ़ गई कि गुफा के द्वार के ठीक सामने पहुंच गई और गुफा में महादेवी के पास बैठकर ही उस चट्टान के दर्शन होते थे। श्री महाराज जी ने कहा कि इसी माँ की ध्वजा का नया स्थान बन गया है, इस पर झंडा चढ़ाओ। और प्रति वर्ष 1970 से लेकर इस पर झंडा चढ़ाया जाता था। 12 वर्ष तक माँ की ध्वजा धारण कर ये चट्टान 1999 की बरसात की एक बार में धाराशाही हो गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस विषय को विराम देती हूँ और आप सब से कहूंगी कि इस दैवी लीला को सुनकर देखकर ये समझना चाहिए कि ये सच्ची बातें हैं, सच्चाई है। जब भी मनुष्य पर कोई विपत्ति आती है तो भक्ति उसका साथ देती है। महाराज जी की भक्ति के कारण ही इस प्रकार हम कई खतरों से मैंने देखा कि मैं वहां बचती रही और मैं आज आपके सामने हूँ। जय प्रभु गीता माँ।